साथ तुम्हारा प्रभु इतना है प्यारा,
शांति ओम शांति। जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। बाबा के नूरे रत्न अथक सेवाधारी और बचपन से ही बहुत सुंदर आशाओं को लेते हुए विश्व के कोने कोने में पहुंचकर आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं, बाबा का संदेश दिया है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। आप बाबा के साकार पालना लेते हुए और सभी को उसका अनुभव करा रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका नाम है मोहन सिंगल भाई जी। आपने नौकरी भी की है अपनी लौकिक में, लेकिन जब बाबा का संदेश मिला तो सब कुछ छोड़कर, जैसा बाबा कहते हैं, सब कुछ समर्पित करते हुए और आगे सभी को दर्शन करा रहे हैं बाबा का अपने चेहरे के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। अपने ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के तहत 20 प्रभाग बनाए गए हैं, विंग है, जिसमें SEW साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, जिसके आप वाइस चेयर पर्सन हैं। बहुत ही सुंदर आपके कार्य रहते हैं। इस विंग के तहत आपका देश विदेश हर जगह जाना होता है। विशेष आज जो चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, उस पर आपकी खोज है, कैसे उसको खत्म किया जाए, और उसके लिए आपका विशेष योग चलता रहता है। और जो भी यहाँ तपस्याएं होती हैं, भट्टी होती हैं, क्लासेस होती हैं, उसमें आपकी विशेष क्लासेस रहती हैं। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो भाई साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रमुख प्रखर वक्ता हैं हमारे बीच, तो हम तो यही कहेंगे, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, हवा पत्तों को हिलना सिखाती है, और आज आप सीख कर देखिए तो भाई साहब मन को जीतना सिखाते हैं। भाई साहब का विषय है मन जीते सो जगत जीत। बहुत ही बड़ी बात है, जिस मन को चंचल घोड़ा कहा गया है, और आज भाई साहब अपने अनुभवी वक्तव्य के द्वारा उस मन को जीतना सिखाएंगे। भाई साहब से निवेदन है हमारे सभी भोपालवासी भाई बहनों के लिए, आप अपने अनुभवी वक्तव्य रखेंगे आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। हम सभी मिलकर एक बार उस रीति से ओम शांति कहेंगे जैसा यज्ञ के आदि में सब ब्राह्मण वत्स मिलकर के, और साथ में ब्रह्मा बाबा भी ओम ध्वनि की उच्चारण किया करते थे, तो अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। जब भी हम लोग अपने जीवन में जीत शब्द सुनते हैं तो क्या होता है, खुशी होती है, और खुशी के साथ आनंद भी होता है, उमंग उल्लास बढ़ता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि हम जीत सकते हैं। और इस रीति से जीवन में जीतने की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। और बाबा ने तो वरदान ही हम बच्चों को दिया हुआ है, कौन सा? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जीवन में हम सब इस चीज के अभ्यासी हैं, अनुभवी हैं। हार जीत कोई बात होती है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। ब्यूटी तो तभी है कि हार होते हुए भी हार का की अनुभूति न हो। तो हमारे भाई बहने भी ना कहा करते हैं, सुना होगा आप सबने भी, भाषणों में भी कोट करते हैं, जैसे कोई आता है स्वागत करते हैं, फूल देते हैं, गुलदस्ता देते हैं। और बाबा भी हमें याद है कि ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का हमें 6-7 साल मौका मिला, तो बाबा भी क्लास में आते थे, फूल लाते थे और फूल को दिखा के कहते थे, बच्चे देखो ये तो फिर भी जड़ फूल है, आप सभी चैतन्य फूल बाबा की बगिया के यहाँ मेरे सम्मुख बैठे हैं। जो यहाँ बैठे हैं उनको तो बाबा देख ही रहा है, लेकिन बाबा सृष्टि की समस्त आत्माओं को सामने रख करके उन आत्माओं को दृष्टि दे रहा है और उन आत्माओं की खुशबू ले रहा है। तो बाबा के सम्मुख केवल यही आत्माएं नहीं, छोटा हॉल था उसमें बाबा क्लास कराते थे, तो केवल इतने ही बच्चे नहीं कि जो सामने बैठे हैं, बल्कि सृष्टि की समस्त आत्माओं को बाबा सम्मुख देख रहा है। और इस तरीके से फूल को भी बाबा अक्सर करके, कभी गुलाब का फूल, कभी चमेली का, कभी अलग अलग फूल लाके बाबा कई बार बच्चों को बहलाते थे। तो फूल के बारे में तो सुना होगा ना, जिसमें गीता का भी सार आ जाता है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सुना होगा, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है और मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। तो ये जो सार है, ये बात किस पर आधारित है कि हार हो लेकिन उसमें भी मन मुस्कुराता रहे, ये बात सारी की सारी हमारी मन की अवस्था पर निर्भर है। हम सभी जानते हैं, तो इसीलिए मन की अवस्था, मन को कैसे हम, जीतना शब्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन जो है ना, मन को वश में करना या जीतना, बल्कि मन को सदा अपने साथ लेकर के साथ चलना, मन को अमन कर लेना, यही एक कला है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, क्योंकि बाबा भी हम सब की तरह परिवार वाला था, घर गृहस्थी वाला, नौकरी धंधा यानी व्यवसाय बिजनेस सब कुछ होते हुए भी फिर बाबा ने मन को कैसे किया वश में। तो बाबा खुद भी अपनी बात बताते हैं कि बच्चे जब बाबा बैठता था ना, शुरू में 1936-37 की बात, तो मन भाग जाता था बार बार बाबा का, बार बार मन भागता था, तो बाबा क्या करता था, फिर मन को लाता था, फिर मन भाग जाता था। तो बाबा ने क्या युक्ति रची, क्या करा बाबा ने, मन को एक पत्र लिखा। उस पत्र की कॉपी हम सब, जो सीनियर भाई लोग थे, उन सब को उसका हिंदी अनुवाद करके दादा आनंद किशोर होते थे, उन्होंने वो एक एक पत्र की कॉपी सबको दी थी। पत्र में बाबा ने क्या लिखा था, बाबा ने मन को एड्रेस किया था पत्र कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, लेकिन मुझ आत्मा राजा को तुमने कमजोर कर दिया, तू बलशाली हो गया और मुझे कमजोर इतना कर दिया कि मैं राजा होते हुए भी तुझ मंत्री के पीछे पीछे भागता रहा, तू मुझे जहां जहां ले जाता रहा मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा, तूने मुझे बहुत कमजोर कर दिया। फिर दूसरे पैरा में बाबा ने लिखा था कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूं तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर। बाबा ने ऑर्डर किया मन को। और इसी तरह बाबा ने एक दूसरा पत्र बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं भी बस तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, भागता रहा, लेकिन अब हे बुद्धि, मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब तुझे मेरे हुक्म पर चलना पड़ेगा, मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं, तुम मेरी कर्मचारी हो। इस तरह बाबा ने ऑर्डर किया। तो आज हम भी सोचें कि बाबा ने जैसे ही मन को बुद्धि को ऑर्डर किया, तो क्या मैं भी राजा बनकर मन को ऑर्डर करता हूं या करती हूं, मुझे भी। और उसके लिए क्या है, मन तब वश में रहेगा जब हम उसे ऑर्डर करेंगे मालिक बनकर के, राजा बनके, तो मन हमारी बात मानेगा। उसका भाव क्या है कि हम राजा बनके तब ऑर्डर कर सकेंगे जब हम अपने स्वमान में स्थित होंगे। तो इसीलिए हम अपने को देखें कि मैं कितना स्वमान में स्थित होकर के मन को ऑर्डर करता हूं। तो जब अपने स्वमान में स्थित होंगे तो मन हमारी बात मानेगा। लौकिक में भी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है या कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, अगर जब तक वो अपनी सीट पर स्थित है, सेट है, पावर में है, तब तक तो सब लोग उसकी बात मानेंगे। लेकिन जब मानो पॉलिटिकल लीडर है, इलेक्शन हार गया, वो पावर में नहीं है, तो कोई उसकी बात मानेगा, नहीं मानेगा। या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बड़ा सीनियर है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, कोई भी है, जब तक वो किसी जगह पोस्टेड है, उस जगह के लोग सब उसकी बात मानेंगे। और जब उसका अगर कहीं ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, तो पहली जगह के लोग उसकी बात मानेंगे, नहीं, चला गया वहां, क्योंकि वो वहां पर उस जगह पावर में नहीं है। ऐसी जब तक हम भी अपने स्वमान में, अपने आध्यात्मिक पावर में, आत्मिक शक्ति में स्थित नहीं होते हैं, तो मन भी हमारी बात नहीं मानता। इसीलिए मन को जीतने के लिए एक तो ये है जो बाबा ने किया। तो बाबा ने सबसे पहले यही किया कि मन को ऑर्डर किया स्वमान में स्थित हो करके, तो तभी बाबा मन जीते जगत जीत की स्थिति में आगे बढ़ता रहा। कैसे पता चले कि मन हमारे ऑर्डर में है, हमने मन को जीत लिया है या हम जीतने के प्रोसेस में हैं, पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? देखो, हम ब्रह्मा बाबा की बात बताते हैं रेफरेंस के रूप में, क्योंकि हमारे सामने रोल मॉडल तो ब्रह्मा बाबा है। तो 1962 में ज्ञान में आए थे, 62 में, और उसके बाद से लगभग हर साल में ही 3-4 बार बाबा से मिलना होता था, और चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उस समय या उसके बाद पढ़ाई पूरी करके जॉब में थे, तब की बात हो। लेकिन बाबा के पास जाते थे हम लोग तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या समाचार है, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, क्या सेवा कर रहे हो। बस बाबा पूछते थे, हम लोग बताते थे, और बाबा और बताए तो उसमें और कई बात कहा करते थे, बाबा ये पुरुषार्थ में कमी दिखती है, ये सेवा में तीव्रता और कैसे आए, आदि आदि, तो बाबा उसको बताया करता था। तो पहले तो शुरू में 62-63 में ऐसी बात होती थी, फिर जितना जितना समय बीतता जा रहा था बाबा समेटता जा रहा था चारों तरफ से अपने को, और 1967 वगैरह में हमने ये देखा, 66-67 में बाबा के सम्मुख जाते थे और बस एक दो लाइन ही बोलते थे कि बाबा ये पुरुषार्थ है या ये सेवा चल रही है, तो बस बाबा कहता था हाँ बच्चे बाबा समझ गया। हम लोग कहते थे बाबा अभी तो हमने कहना शुरू ही किया है अपनी बात, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और फिर बाबा उसका समाधान देता था। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य ये मिला है, सौभाग्य तो सभी बच्चों का है बाबा के ज्ञान में आए हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य, हम इसे समझते हैं अपना, ये मिला है कि जब 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा तो उससे 2 दिन पहले हम मधुबन आ गए थे 17 जनवरी की सुबह, और 17 जनवरी और 18 जनवरी यहाँ मधुबन में बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। मन को जीतने की अवस्था क्या होती है वो देखने का मौका मिला। तो उसमें हमने क्या देखा, एक लक्षण पहला मन जीते जगत जीत का ये देखा कि जब उन 2 दिनों में बाबा के सम्मुख जाते थे गए तो बाबा ऐसे थोड़ा दृष्टि देता था देख के, और फिर दृष्टि देख के बाबा कहता था, एक अक्षर भी हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी नैन से ही बाबा मन के सारे भाव पढ़ लेता था जो भी हम पूछने जा रहे हैं, और उस प्रश्न को भी बता देता था और उसका समाधान भी बाबा दे देते थे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन उन 2 दिनों में लगभग 6-7 बार ऐसा हुआ जब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक तो हम ये समझते हैं कि मन जीते जगत जीत का एक ये पहला लक्षण है, जिसने अपना मन जीता होगा वो दूसरे के मन के भाव को तुरंत पढ़ सकेगा। अगर हमने अपना मन ही पूरा नहीं जीता होगा तो मेरे अपने संकल्प दूसरे के मनोभावों से मिक्स हो जाएंगे और हम उसको एग्जैक्टली उस रीति से नहीं पढ़ सकेंगे, उसमें हमारी भावनाएं, हमारा कोई बाइसिंग एटीट्यूड हो, हमारी कोई भी बात हो, वो मिक्स हो जाएगी उसमें, और उस व्यक्ति के सही प्रश्न ना तो प्रश्न जान पाएंगे ना उसका समाधान दे सकेंगे। इसीलिए पहली आवश्यकता ये है कि एक तो अपने मन के भावों के ऊपर विजय पूरी प्राप्त करना, और इसके लिए क्या आवश्यक है, मन हम कहते हैं ना मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा के क्या है फैकल्टीज हैं जैसे कि, लेकिन मन से भी और सूक्ष्म क्या है, क्या है मन से भी सूक्ष्म, संकल्प। हाँ संकल्प तो मन का ही एक वो है अंग, सोचने की कला का ही नाम, सोचने की शक्ति का नाम ही मन है और वही सोचना माने संकल्प, और क्या है वृत्ति, या इसे ये भी कहे एक माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड, और वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। उसके आधार पर ही हमारा संकल्प, तो चैतन्य मन के आधार पर चलती है। अभी हम सब जगह है सुन रहे हैं तो हमारा मन कार्य कर रहा है, लेकिन जब हम सो जाते हैं मन सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है, तो वृत्ति जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ओवरटेक कर लेता है, और उस सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर ही सारी प्रक्रिया चलती है, चाहे स्वप्न हो चाहे कोई भी सूक्ष्म वृत्ति हो, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को वो समझना वो भी जरूरी होता है, और उसका भी मन जीते जगत जीत में बहुत गहरा स्थान है। एक बार बाबा ने, हमें याद है, यही हिस्ट्री हॉल में बाबा अव्यक्त बाबा दादा आए हुए थे, ऐसे ही बाबा आते हैं और हम लोग आगे ही आगे बैठे थे। और पहले ये होता था कि जब बाबा आते थे मुरली चला देते थे, तो मुरली चलाने के बाद जो हमारी मुख्य दादियां होती थीं, सात आठ दादियां, वो स्टेज पर बाबा के पास आ जाते थे, और बाबा फिर उनको देख करके और ज्ञान की गुह्यता की बात करा करते थे। अक्सर करके ऐसा होता था, बाद में भी ऐसा होता रहा, दो मुख्य दादियां वगैरह जाते थे, लेकिन शुरू में सात आठ दादियां। तो एक बार की बात है, बाबा ने प्रश्न पूछा दादियों से कि बच्ची ये अष्टरत्न जो होते हैं, वो अष्टरत्नों में और जो सौ और रत्न होते हैं उनमें क्या अंतर है, किस आधार पर वो सौ अन्य रत्नों से आगे निकल गए, आठ में आ गए। तो दादियां तो जैसे शांत रहते हैं जिससे बाबा उसका उत्तर दें, तो दादियां और हम सभी लोग बाबा को देख रहे थे, तो बाबा ने बताया कि जो अष्ट रत्न है उनकी नींद में भी कमाई होती है, सोएंगे उसमें भी उनकी कमाई होगी, और जो दूसरे हैं सौ, वो जितने चेतन हैं जागृत अवस्था में हैं, जो भी याद सेवा जो भी करेंगे वो कमाई है, लेकिन अष्ट रत्नों की एडिशनली कमाई, उसके अलावा नींद में भी कमाई होगी। और नींद में क्या है कमाई, उसका आधार ही है सबकॉन्शियस माइंड, जो वृत्ति जिसे बताया, क्योंकि वृत्ति का भी आधार है साथ साथ ना जो स्मृति। तो इसीलिए जो हमारे आध्यात्मिक सशक्तिकरण किताब भी बनाई हुई है, उसमें ये सब की जैसी स्मृति होती है वैसी ही वृत्ति होती है, जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि होती है, जैसा बताते हैं ना। और इसीलिए वृत्ति का प्रत्यक्ष रूप दृष्टि या दृष्टा भाव से पता चलता है। इसीलिए जो अंतिम समय का पुरुषार्थ है वो कौन सा पुरुषार्थ है, साक्षी दृष्टा का, क्योंकि जब चारों तरफ परीक्षा होगी, हाहाकार होगा, चारों तरफ ऐसी परिस्थिति होगी, हलचल वाली परिस्थिति, एक तरफ अर्थक्वेक होंगे, फ्लड होंगे, सुनामी होंगी, विराश के दृश्य होंगे, दूसरी तरफ शारीरिक संबंधों के जो है बातें वो होंगी, सूक्ष्म मन में विकार हैं, अंश का वंश रह गया है उसकी बातें होंगी, तीसरी बात जब अति हलचल होगी उसमें भी कैसे अति अचल रहें वो बात होगी, पुराने स्वभाव संस्कार कई सारी चीजें अंत में जब इकट्ठे होंगे, और सबसे बड़ी बात शरीर का हिसाब किताब अंत में। बाबा ने बताया है बहुत पेपर होंगे चाहे, लेकिन दो पेपर विशेष एक शरीर का पेपर, दूसरा परिवार का पेपर। ये हमारा ब्राह्मण परिवार, इसका पेपर कैसे होंगे? इसका पेपर, शरीर का पेपर तो जो भी बचे कुचे हिसाब किताब होंगे वो सारे शरीर से अंत में वो छुट्टी लेंगे। बाबा से भी ना हमें याद है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और बाबा का बाद में भोग लगा, तो बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा आते थे, कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी? आप सबको भी बीच में मुरली में भी आया था जब रिवाइज कोर्स की मुरलियां चल रही थी, तो आपको अंत में क्या अनुभव हुआ बाबा जब आप शरीर छोड़ रहे थे? तो क्या अनुभव हुआ था बाबा को, क्या याद था? किन किन का टकराव? बुद्धि, अच्छा, और नहीं, बाबा ने यही बताया कि एक तरफ तो ना कर्म भोग वो अपनी चरम सीमा पर था, बहुत तेज हार्ट में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि बस अब ये शरीर छोड़ रहे हैं जैसे, क्योंकि बाबा ने कई बार बताया है ना कि सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी है, हार्ट अटैक। बाबा को भी उसकी महसूसता हुई, हार्ट अटैक की, हार्ट फेलियर की। तो एक तरफ कर्म भोग अपनी चरम सीमा पर था और दूसरी तरफ योग बल, जो बस आत्मा जो है ना बस अपने घर और बाप की याद में थी। तो कभी वो शक्तिशाली हो जाता था, कभी वो शक्तिशाली। शुरू में कर्म भोग ज्यादा शक्तिशाली था और स्वाभाविक है कि जब कर भोगना है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, उस समय याद कैसे रहेगी बाबा की? तो उस समय पहले कर्म भोग शक्तिशाली था, योग बल थोड़ा कम था, लेकिन धीरे 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 योग बल बढ़ता जा गया, कर्म भोग कम होता गया और अंत में योग बल ने कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली और आत्मा मक्खन से बाल की तरह बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। यही बाबा का ये अनुभव हम सब लोगों के लिए भी है। ऐसे मम्मा का अनुभव, वो तो बहुत विचित्र था, जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तब बाबा साकार में तो यहीं थे, तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और मम्मा ऊपर गए, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा से मिले और शिव बाबा और उन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा तो बाप दादा ने पूछा, शिव बाबा ने और सूक्ष्म वतनवासी, मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का आपने अनुभव किया, आप वो अनुभव करके आई हो? तो मम्मा का तो जैसे संस्कार था बाबा के सामने चुप रहने का, और मम्मा ने फिर बाबा के पूछने पर कहा, नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची जाओ, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है, वहां जाओ और उस शरीर में जाके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो बाबा ने मम्मा को फिर ऊपर से भेजा और नीचे, और शरीर तो वहां रखा था और सभी लोग मिलके योग कर रहे थे। तो जब मम्मा नीचे आई और थोड़े समय के बाद फिर जब मम्मा ऊपर गई, तो बाबा ने कहा, बच्ची अनुभव करके आई क्या? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, अनुभव नहीं किया। क्यों बच्ची? कि बाबा जब मैं नीचे गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, शरीर में कोई भी चुरपुर नहीं हुई, उन आंखों के द्वारा भी जैसे कोशिश की, पुरुषार्थ किया आंखों के द्वारा, क्योंकि ये कर्मातीत अवस्था माने देखते हुए भी न देखने की स्थिति, कानों द्वारा सुनते भी न सुनने की स्थिति। कर्मातीत अवस्था का अंत में काफी विशाल वर्णन है। तो अब शरीर ठंडा हो गया था, तो कोई भी शरीर में हलचल नहीं हुई, चुरपुर नहीं हुई, इसलिए कर्मातीत अवस्था को का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा था, बच्ची देखो कर्मातीत अवस्था तो हर एक को प्राप्त करनी है, और कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया तो तब तक तो फिर परम धाम अपने घर भी और वहां भी नहीं जा सकते, नई दुनिया में भी पूरा आत्मा को पवित्र बनना पड़े। परम धाम तो है ही है पवित्र स्थान, वहां जाना पड़ेगा संपूर्ण पवित्र होके। तो तब बाबा ने राज खोला था, जैसे जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लोगे और जन्म के द्वारा फिर जो पुरुषार्थ करोगे उस तुम नेक्स्ट जन्म में फिर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करोगे करोगे और उसके बाद फिर अपना नया जन्म होगा। तो ये जो बाबा मामा की बात है अनुभव की, ये उन्हीं के लिए नहीं है या सुनने तक ही नहीं है, ये हम सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर में कितनी भी व्याधि क्यों ना हो, बीमार हो, बहुत कंटाल जाए, बहुत कष्ट हो, बस बाबा ये शरीर छोड़े, और ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कि ये जन्म तुम्हारा बहुत बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, क्योंकि इसके द्वारा ही सारी बात होती है, पूरा पुरुषार्थ। इसीलिए किसी भी हालत में कुछ भी हिसाब किताब हो, कभी भी संकल्प छोड़ने का नहीं आना चाहिए। तो इसमें ही फिर बात आती है अंत तक कैसे मन जीते जगत जीत की स्थिति तक जाने की। तो जैसा मैं बता रहा था बाबा का, एक तो 17-18 जनवरी के वक्त हमने ये देखा कि बाबा का बस देखते दृष्टि देते ही मन के भावों को पूरा परख लेते थे, पढ़ लेते थे और बता देते थे, और फिर उसका समाधान भी साथ साथ दे देते थे। एक तो ये देखा मन जीते जगत जीत की स्थिति। दूसरा क्या देखा, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है ना, और हम सबने सुना हुआ है कि अंत मते सोगति होती है, हम सभी भी चाहते हैं अंत में हमारी ऐसी सदगति हो बस कोई और भी बाबा के सिवाय कोई और याद ना आए। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अंत समय आत्मा वहीं उसकी बुद्धि जाती है जहां कहीं कनेक्शन है, लगाव है, झुकाव है, कहीं पर भी जो जिसके साथ भी ना हमारा कुछ भी हिसाब किताब रहा हुआ है, वहीं पर ही बुद्धि जाएगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत अति प्रेम वो भी घातक है, घृणा का भाव वो भी घातक है। इसीलिए बाबा कहता है अंत में ऐसी स्थिति हो कि कोई भी याद ना आए। तो बाबा ने ना बाबा का क्या देखा, तो बाबा ने देखो एक वहां पर भी व्यक्ति की बुद्धि जाती है जो पेंडिंग काम होता है, अधूरा काम है, जो काम करना चाह रहे थे फिर भी हम कहते हैं कल कर लेंगे, टाल देते हैं, और वो काम रह जाता है, और फिर अगर बीच में शरीर छूट गया तो उसका बड़ा पश्चाताप होता है। हम तो मधुबन में रहते हैं अक्सर करके, जो भी बीके भाई बहन शरीर छोड़ते हैं तो उनके परिवार वाले आके भोग लगाते हैं यहाँ पर। तो अक्सर करके ये देखते हैं कि जब भोग लेकर जाया जाता है उस आत्मा के प्रति, तो वो आत्मा कई बार बहुत जैसे व्याकुल और जैसे आंखों में आंसू होते हैं कि बाबा आप आए, आपको पहचाना भी, लेकिन फिर भी हम अलबेले होकर चलते रहे, और मैं सोचता रहा हाँ ये करूंगा ये काम बाबा के लिए, इतना तन मन धन लगाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन मैं सोचता ही रह गया कल करूंगा, कल फिर मेरा शरीर छूट गया, और अब तो बाबा मैं तो शरीर छोड़ दिया, अब कैसे होगा। तो बाबा बताते हैं बच्चे अब तो समय निकल गया, अब तो उनका भाग्य बनेगा अगर कोई बच्चे या वो देंगे तो उनका भाग्य बनेगा, तुम्हारा थोड़ी बनेगा। तो इसीलिए अगर हमारा कोई भी काम पेंडिंग रहा हुआ हो, विल बनानी बाकी हो, या घर में कोई सास बहू का बात हो, कोई भी की का चाबी देने की, समझाने की, या जो भी पेंडिंग काम हो उसको हम पूरा कर ले, और वो अगर रह गया तो अंत में आसानी से प्राण तन से नहीं निकलेंगे, बहुत आत्मा व्याकुल होगी और बार बार वही पेंडिंग काम, बचे हुए काम, अधूरे काम याद आते रहेंगे। तब मन जीते जगत जीत की स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि मन में बार बार वही संकल्प आएगा जो रहा हुआ काम है। इस कारण से एक तो कोई नहीं, और बाबा ने भी यही किया। देखो वैसे तो सारा हम एक दो साल से देखते थे, 68 से 67 से बाबा समेट करके बिल्कुल बहुत अंतर्मुखी गंभीर और होते जा रहे थे। बहुत अगर कहीं पर बहुत बोलने की जरूरत है तो ही बाबा बोलते थे, नहीं तो एकांत में अपना समय अपने आप को देते थे। तो अंतिम दिन भी 18 जनवरी को बाबा ने क्लास के बाद, क्लास सुबह नहीं कराई बाबा ने, सुबह सिर्फ योग कराया। हम तो यहाँ दे थे और हमने तो अपनी आंखों से देखा। बाबा ने यीशु दादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो, कोई भी पत्र बिना जवाब के ना रह जाए। नहीं तो जैसे बाबा को तो आभास हो गया था कि आज अंतिम दिन है, आज मुझे शरीर छोड़ के जाना है, ये अंतिम बच्चों से मिलन है, तो बच्चों को ये संकल्प न चले कि अरे मैंने तो बाबा को पत्र लिखा और बाबा जवाब दिए बिना ही पहले बाबा ने शरीर छोड़ दिया, चले गए। तो एक भी बाबा का पेंडिंग काम नहीं रहा कि जो जवाब देना बाकी हो। तो हमारा भी कोई भी ऐसा पेंडिंग काम न रहे, घड़ी अंतिम घड़ी का तो मालूम नहीं है। तीसरी चीज कि बाबा हमेशा ना, ये जो नक्की लेक का म्यूजियम है देखा है आपने, सब पुराने ही बैठे हैं, तो उस समय यहाँ पर एक प्रदर्शनी की गई थी और सबको लगा कि ये तो नक्की लेक के पास है, यहाँ तो टूरिस्ट काफी आ सकते हैं, इस बिल्डिंग को ले लेना चाहिए। लेकिन तब हमारे साधन भी सीमित थे, हमारा सब कुछ कोई इतनी संपन्नता नहीं थी, तो इस कारण से सब चल रहे थे ले न ले, ले लिया जाए नहीं। लेकिन फिर उसी दिन ही बाबा ने वो उस फाइल पर साइन करे कि हाँ इस मकान को ले करके यहाँ पर ये सेवा का स्थान बनाया जाए, ये भी पेंडिंग काम जो रहा हुआ था वो खत्म हो गया। चौथी बात कि रोज क्लास है, यहाँ पर देखते हैं ना रोज लगभग 8:45 बजे क्लास रात्रि शुरू होती है, लेकिन उस दिन 7 बजे ही, उससे पहले ही थोड़ा बाबा ने, एक जमुना प्रसाद भाई हैं यहाँ पर, तो उन्हें बुलाकर कहा कि बच्चे आज बाबा अभी ही 7 बजे क्लास कराएगा, थोड़ी देर बाद सब बच्चों को कह दो कि सब भोजन करके क्लास में आए। ये बाबा ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी, भोजन करके। क्यों? क्योंकि बाबा को ऐसा आभास हो गया था कि बस आज जो है अब बाबा का ये बच्चों से अंतिम मिलन है, और अगर उस समय क्लास के बाद ही शरीर छोड़ा और भोजन नहीं किया होगा बच्चों ने, तो उसके बाद तो कोई भी भोजन नहीं करेगा, भोजन रखा ही रह जाएगा, बच्चों भी क्या अवस्था होगी। तो इस कारण से बाबा ने ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी। तो इतिहास में जो गायन है, किसका गायन है? जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म पितामह का। तो ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे भीष्म पितामह है, सबसे आगे तो ब्रह्मा बाबा को भी यही इच्छा, बाबा को जो आभास हो गया था, और हम सब भी नंबर वार भीष्म पितामह हैं। तो ब्यूटी तो तभी है कि हम सब भी ब्रह्मा बाबा की तरह अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, अगर बीमारी के कारण शरीर छूट गया या अर्थक्वेक आई, बिल्डिंग गिरी उसके कारण छूट गया, या प्राकृतिक आपदाओं में फ्लड आया, सुनामी आई उसके कारण, तो फिर क्या, ये तो दुनिया भी ऐसी प्राण त्यागती है, फिर हम में और दुनिया में क्या अंतर हुआ। लेकिन बाबा ने ये कहा है कि मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं और बच्चे ऑटोमेटिकली, उनके पांव अगर बुद्धि योग उनका ठीक रहा बाबा से, तो बाबा समय पर टच करेगा और बच्चों के लिए वो व्याधि या वो प्रॉब्लम जो समस्या होगी वो बिल्कुल सूली से कांटा हो जाएगी और उसमें सफलता का बिगुल बजाते हुए बच्चे बाहर आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन बस यही है कि हमारा बुद्धि योग जो बाबा टच करता है उसको कैच करे, और बाबा ने कहा सोचना भी नहीं पड़ेगा बच्चों को, वो कैच किया, समय पर कदम वहीं बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो एक ये हमें करना है, और उस दिन बाबा का देखा हमने कि वैसे बाबा को कई बार खांसी वगैरह आती थी, उम्र थी इतनी, एज भी थी, लेकिन बाबा ने अंतिम दिन का विशेष पुरुषार्थ क्या किया उसके लिए, वो योग के बाद हम लोग सुनते हैं। तो क्या बात चल रही थी, तो जैसे ओल्ड एज थी, बात हो रही थी खांसी की, तो कई बार खांसी आती थी, और लास्ट एक दो दिन में तो बाबा को विशेष कफ का और खांसी का ज्यादा ही थोड़ा इसका वो था। लेकिन जैसे बताया कि जब कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया कि कर्मातीत अवस्था हुई और तुरंत शरीर छोड़ दिया, उस अवस्था का कुछ समय कुछ घंटे अनुभव नहीं किया तो फायदा क्या। तो इसीलिए बाबा को चूंकि आभास हो गया था, अनुभव हो रहा था, तो अंतिम दिन 18 जनवरी की रात को जब बाबा क्लास कराने आए, तो जल्दी क्लास थी उस दिन, तो बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से जैसे विजय प्राप्त कर ली थी। तो यही स्थिति हम बच्चों की भी होगी, उससे पहले कर्म भोग बहुत अपनी चरम सीमा पर होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया ना, बहुत युद्ध थी और बाद में कर्म भोग के ऊपर योग बल ने विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे ही अंत तक, क्योंकि ये हमारा सबसे निकट का साथी है, आत्मा का निकट का साथी तो शरीर है, यही पांच तत्वों से बना पुतला। तो इस कारण से ये हमें देखना है अपने कि कितना हम कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जितना ये विजय प्राप्त होती जाएगी उतना उतना क्या होगा, बिल्कुल जो कर्म भोग है वो हमें परेशान नहीं करेगा। इसे दूसरे शब्दों में स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर संपूर्ण रीति से विजय होगी, ये लक्ष्य हो। बाबा कैसे करता था, जब कभी खांसी भी आती थी ना, आप देखोगे अभी हिस्ट्री हॉल में भी ऐसा है कि वहां पर पहले तीन संदली रखी रहती थी, एक ऐसा दरवाजे के पास जो बाबा आते थे वो बाबा की संदली थी, इधर मम्मा की होती थी, और बीच में वो खाली रहती थी, बच्चे आते थे अनुभव सुनाते थे और उसमें फिर बच्चे अनुभव सुना के जाया करते थे। तो जो ये मतलब जो बीच का संदली पर जब बच्चे बैठते थे, बाबा जब मुरली चलाते थे, कभी खांसी आती थी तो बाबा के पास सामने ट्रांसलाइट में कृष्ण का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र लेफ्ट साइड में रखा रहता था। अब बाबा कहते, देखो बच्चे आज तो बाबा का ये पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्व है, तमोगुणी ये वातावरण, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, तत्व भी सत्व प्रधान होंगे, सबको नया सत्व प्रधान शरीर मिलेगा, कोई भी व्याधि नहीं होगी। तो स्वस्थिति बाबा इतनी ऊंची करता जाता था, कल ऐसा दुनिया होगी, ऐसा जाके बाबा विष्णु कृष्ण बनेगा, बस कि धीरे धीरे जो खांसी रूपी परिस्थिति आती थी वो परिस्थिति बिल्कुल शांत हो जाती थी। और उस नशे खुशी में, और जिससे बाबा कई बार क्या होता है, बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए, गग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे बाबा कई बार करके बताते भी थे। भाव क्या है कि हम अपनी स्वस्थिति को इतनी ऊंची करने की परिस्थिति नीची हो जाए, तो परिस्थिति कभी भी हमें हार नहीं खिलाएगी, हम हमेशा परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। एक ये लक्षण है, जब मन जितना शक्तिशाली मन जीतता जाता है तो मन जीते जगत जीत की ये स्थिति होती जाती है। और क्या देखते थे हम बाबा को कि जब कभी भी हम बाबा यहाँ हिस्ट्री इधर बच्चों से मिला करते थे, तीन जगह होती थी जहाँ बाबा बच्चों से मिलते थे, या तो बाबा एक दो लोग अगर होते थे किसी को बच्चे को मिलना तो अपने कमरे में भी मिलते थे, या अगर पांच छह की पार्टी होती थी तो यहाँ झोपड़ी में भी मिल लेते थे, लेकिन अगर ज्यादा की पार्टी होती थी 12-15 और वो, तो बाबा फिर वहां पर मिला करते थे, कहां पर, हिस्ट्री हॉल में। और इस तरीके से बाबा मिला करते थे, बच्चों के हालचाल दिल की बात को पूछा करते थे। तो 18 जनवरी को, ये मैं उस दिन का बताता हूँ कि बाबा के सम्मुख बाबा मुरली चला रहे थे, हम भी सम्मुख बैठे मुरली सुन रहे थे, तो बस बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते हमें एक संकल्प आया, देखो भगवान तक बच्चों के भक्तों की बात पहुंचती है, भक्ति मार्ग में तो हम गाते आए हैं, और बस भक्तों की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन ज्ञान मार्ग में यही, हम सब भी तो भक्त रहे हैं, अब ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण की आत्मा है, तो इसीलिए उनका भक्त द्वापर युग से तो भक्ति की है। तो सुनते सुनते मेरे मन में संकल्प आया कि क्या ही अच्छा हो बाबा कुछ मेरा हमारा नाम लेके या हमारे लिए कुछ ऐसी बातें बता दे बस जो हमारे पुरुषार्थ में हमें और तीव्रता लाए। तो बस जैसे ही मन में संकल्प उठा, अब वो तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा थी, बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, तो इसीलिए इधर संकल्प उठा उधर बाबा ने कैच किया तुरंत, और तुरंत ही बस नाम लेके कुछ महावाक्य बाबा ने मुरली में उच्चार दिए 18 जनवरी की अंतिम साकार मुरली में। अभी तक भी वो बाबा के टेप जो है मिलती है पेन ड्राइव के फॉर्म में या सीडी के रूप में, 18 जनवरी तो किसी को भूलने वाली तारीख है ही नहीं है। तो भाव क्या है कि हम बच्चे भी ना कोई भी हमें भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो अवस्था प्राप्त की वो ही हम बच्चों को करनी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अकेला तो सतयुग में जाएगा नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब बच्चे भी जाएंगे, इकट्ठा ही राज्य करेंगे, इकट्ठा ही नई दुनिया में रहेंगे। तो इस कारण से ब्रह्मा बाबा ने जो स्थिति प्राप्त करके बच्चों की अवस्था को जाना, अब हमारे द्वारा वही पार्ट अंत में चलना है, इसलिए उसके लिए हमें अपने को मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि अंत में ना हम सब, वैसे भी कहते हैं ना हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, तो हम कहते हैं कि बाबा कहता है तुम ब्रह्मा के बच्चे क्या बन गए हो, ब्रह्मचारी तो बन गए हो, अब क्या बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, पवित्रता को तो धारण कर लिया हम लोगों ने, ब्रह्मचारी बन गए, अब ब्रह्माचारी यानी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए फॉलो करते हुए ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो वो कब होगा? जो जो स्टेज से ब्रह्मा बाबा पास हुए उस स्टेज को सामने रखते हुए हम वैसी ही स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। तो बाबा ने उस दिन अंतिम दिन मुरली चलाई और मुरली चला के बस बाबा आए बाहर और बस आप सबको मालूम ही है बाबा ने बच्चों से क्या कहा। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। विदा शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, कभी भी नहीं बोला, हमेशा गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जैसे स्थिति होती थी वैसा बाबा कहते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बाबा बस दरवाजे से भी बच्चों को, अंत में सभी एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी, छुट्टी ली, विदा ली, बाबा अपने कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ और फिर देह त्याग किया। तो यहां तक तो ये सारा का सारा वो देखा मन जीते की स्थिति, कि चाहे जागृत अवस्था हो चाहे चेतन अचेतन अवस्था हो, हर जगह जैसे कि मन पर बाबा का संपूर्ण नियंत्रण जैसे था। लेकिन जगत जीत, जगत में क्या क्या आता है? जगत में तो ये सभी पूरा दुनिया आ जाती है, केवल मनुष्य ही नहीं आते, पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी और पौधे पेड़ पौधे पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश ये सब जगत में आ जाते हैं। तो ये जगत जीत की स्थिति क्या है वो शरीर छोड़ने के बाद हमने देखी। जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद फिर देखा यहाँ पर कि 18 जनवरी की अर्ली नाइट में बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ था, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल कोई भी लोशन नहीं लगाया गया था, लेकिन बाबा के शरीर में कोई कालापन नहीं आया, कोई दुर्गंध नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि जब बाबा को हम लोगों ने 21 तारीख को स्नान आदि भी कराया कुछ वरिष्ठ भाइयों ने, और हम तो तब छोटे थे उन सब की मदद में, और हमने देखा कि बाबा के शरीर में काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है ना तो शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, लेकिन काफी हद तक कोई भी ये तो बताया कालापन नहीं, कोई बदबू नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता था फरिश्ते की तरह बाबा लेटा हुआ है और अभी हमेशा की तरह उठ के आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे कहेगा बाबा और फिर बाबा मुरली सुनाने लगेगा। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण, पांच तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने का लक्षण, कि ये पांच तत्वों के ऊपर भी बाबा ने कैसे विजय प्राप्त कर ली। तो जब मन जीते स्थिति होती जाती है ना तो उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये प्रकृति जीत के रूप में भी सब बच्चों को अनुभव होने लगता है। तो हम बच्चों को भी ये प्रकृति जीत बनना है, उसके लिए क्या करें, क्या करेंगे प्रकृति जीत के लिए? इसमें मुझे दादी जानकी की बात याद आ रही है, 31 दिसंबर 2000 की बात है, 2000 नया ये वर्ष लग रहा था, वर्ष ही नहीं बल्कि नया का सौवां वर्ष जैसे ना, नए वर्ष उसकी शुरुआत हो रही थी। तो दादी लोटस में थे अहमदाबाद में, दादी की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कुछ भी हो सकता है, जिसको बुलाना है बुला लो और ये तो अब लगभग अंतिम स्थिति पे है। और इधर बाबा आए हुए थे नीचे शांतिवन में, तो बाबा को बताया दादी जी ने, निर्वैर भाई ने, कि बाबा दादी की तबीयत तो बहुत खराब है, जानकी दादी की, और डॉक्टर के भी कोई बहुत विश्वास नहीं है। और तो बस बाबा ने सुना, बाबा ने एक ही लाइन बोली, बच्चे वो तो प्रकृति जीत आत्मा है दादी के लिए, और कुछ नहीं होगा। बस उसके बाद बाबा नॉर्मल रीति से ही सब बच्चों से बात करते रहे, एक ही लाइन बोली कि वो प्रकृति जीत आत्मा है। देखो आज उस बात को 18 साल से ज्यादा हो गए, और इस 103 वर्ष की आयु में भी बाबा दादी हैं। कितना ट्रेवल, आज ही सुबह दादी 3 बजे जर्मनी से वापस लौटी हैं, और अभी अहमदाबाद में भी हैं, और मतलब कितनी सेवा करके, इससे पहले टूमने लंदन थे, और इस आयु में होते हुए भी कितना दादी का ट्रेवलिंग और कितनी सेवा होती है। तो ये प्रकृति जीत का लक्षण, हम बच्चों को भी ना प्रकृति जीत बनना ही है। अगर प्रकृति जीत नहीं बने, प्रकृति के प्रकोप के कारण अगर हमारा शरीर छूटा, तो वो अंत मते सोगति नहीं होगी। अब प्रकृति के कारण या बीमारी कारण या कोई एक्सीडेंट किसी, ये तो दुनिया भी छोड़ती है, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, तो उसके लिए क्या करना है, बस एक एक पॉइंट की बात करेंगे सिर्फ, कि मानो हाँ ये जो है प्रकृति के पांच तत्व है ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। एक तो पृथ्वी बहुत बड़ा कारण बनेगी मृत्यु का, जमीन में हलचल होगी, अर्थक्वेक होंगे, बहुत चारों तरफ विनाश के दृश्य आप समझते हैं, जब हलचल होती है बिल्डिंग की बिल्डिंगें गिर जाती हैं, मास डेथ्स होती हैं, समूह मृत्यु, अकाले मृत्यु। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, क्या बचने का माने, हमारी इच्छा के विरुद्ध प्रकृति हमारे प्राण न ले सके, हमें कष्ट न दे सके, कैसे होगा ये प्रकृति जीत बनने के लिए, हाँ प्रकृति को क्या करें, सकाश दें, ओके वेरी गुड, और साथ में प्रकृति को हम अपना मित्र बना लें। देखो मित्र मित्र की रक्षा करता है, मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता, तो इसीलिए इसमें क्या करना है, हम प्रकृति तत्व के गुण धारण कर लें। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, हाँ सहन शक्ति, और पृथ्वी दाता है, सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी दाता है। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, मल्टी टाइम्स मैनी मल्टी मिलियन टाइम। इसी तरह पृथ्वी पानी देती है, पेट्रोल देती है, अनाज देती है, फल देती है, सब कुछ पृथ्वी से मिलता है हमें, तो पृथ्वी दाता है। तो इसीलिए हम भी अगर चाहते हैं कि पृथ्वी हमारे कष्ट का कारण न बने, तो हम भी दातापन का पार्ट प्ले करें। बस दाता क्या, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन क्या करें, पृथ्वी को हम ये संस्कार धारण करके जिस चीज में कोई खर्च नहीं, सहयोग दें, प्रेम दें, स्नेह दें किसी को, जिसको जो आत्मा आती है उस समय, उस चीज की जो स्थूल की बात नहीं है, सूक्ष्म जो चीज की आवश्यकता है वो हम दान करते चले, हमारे दर से कोई भी खाली ना जाए। देखो दादियों के अभी भी ये संस्कार है, दादियों के पास कोई भी जाता है बस वरदान टोली तो देंगे, साथ साथ गिफ्ट भी, जो भी छोटी कोई चीज हो, दादियों के यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं आता। ऐसे हमारे हाथ से ना, हमारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए। दातापन का अगर गुण होगा तो क्या होगा, और यही चीज स्नेह सहयोग प्रेम शुभ भावना शुभकामना, ये सब चीज में तो कोई खर्चा लगता नहीं, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया, क्योंकि समान संस्कार वालों में मित्रता होती है, पृथ्वी का वो संस्कार है, हमारे में भी ये संस्कार हो गया। अब पृथ्वी मित्र बन गई, अब मित्र मित्र के कभी प्राण नहीं लेता, वो हमेशा समय पर मित्रता उसकी रक्षा करती है। ऐसी पृथ्वी के और गुण, ये होमवर्क है, और आप गुण निकालना। पृथ्वी में सहन शक्ति होती है और क्या क्या होता है, वो गुण को कैसे धारण करें। ऐसी जल का मुख्य गुण क्या होता है, शीतलता और एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, जल का एक ये मुख्य गुण है। ऐसी हमारे संस्कारों में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ऐसा नहीं कि भाई इसके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, इसके साथ मुश्किल है, नहीं, हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सके। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो हमारे बाबा में, ब्रह्मा बाबा में यही तो थी। ब्रह्मा बाबा देखो इतने 93 ईयर के, लेकिन हरेक ये कहता था बाबा मेरा है, बच्चे के साथ बाबा, बच्चे जैसा युवानों के साथ, युवान जैसा बूढ़ों के साथ, बूढ़े जैसा, बिल्कुल वैसा हरेक को लगता था बाबा मेरा है। तो ऐसे ही हम हरेक से उसका अपनापन हासिल करें, हरेक को ये महसूस हो ये भाई या ये बहन तो बिल्कुल जैसा, मतलब हम, हमारा ना, हमारे बहुत हृदय के निकट है। ऐसी अनुभूति होगी तो क्या होगा, ये चीज में हम हमेशा विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो ये जल का गुण है। उससे फायदा क्या होगा कि जितने भी फ्लड आएंगी, सुनामी आएगी, कोई भी चीज आएगी, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, हमारे कष्ट का कारण नहीं बन सकता। ये प्रकृति जीत का लक्षण है। वायु का क्या लक्षण है, क्या गुण है वायु का मुख्य, वायु हल्की होती है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। विपरीत गुण है लेकिन सह अस्तित्व, दोनों साथ साथ रहते हैं। जहां पृथ्वी है वहां वायु भी है, ये प्राण वायु है, मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए वायु की तरह हम हर परिस्थिति में हल्के रहे। कोई परिस्थिति है भारी हो गए, मूड ऑफ कर लिया, और नहीं, हर परिस्थिति में हल्के रहना सीखेंगे तो क्या होगा, जितना साइक्लोन अंत समय में आएंगे, बहुत वायु के बवंडर आएंगे, 200 300 400 किलोमीटर की रफ्तार से वायु बहेगी, लेकिन वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती वायु, क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। तो ये प्रकृति जीत के लक्षण है। और कौन सा तत्व रह गया, अग्नि। अग्नि में क्या गुण होता है, अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। और प्रकृति में अग्नि का स्वरूप क्या है, सूर्य, सूर्य अग्नि का स्वरूप है। तो इसीलिए अंत समय में बहुत अति गर्मी भी होगी, बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो हम अग्नि स्वरूप का गुण धारण कर लें, जिसे बाबा कहता है वॉल्केनिक योग, कौन सा, ज्वालामुखी योग। ऐसा स्वरूप हो जैसे अग्नि में कोई चीज डालो रूप बदल जाता है, ऐसे हमारा स्वरूप भी हो, भाई रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, उसका रूप बदल जाए हमारे सम्मुख आते ही, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, उसे कहने की जरूरत ना पड़े, हमारे स्वरूप में, जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा ना अंत में, कहने की हमें जरूरत नहीं होती थी, बस बाबा ने दृष्टि दी, मन के भाव को परखा, उस चीज की जो आवश्यकता हुई समाधान किया, और फिर बस अपने काम में लग गए। तो ये है अग्नि का स्वरूप, कि अंत में आत्माएं आएंगी, इतना समय नहीं होगा उनके पास कि वो वर्णन करें, लेकिन हम उनके मन के भाव को परख करके उनकी क्या आवश्यकता है उसका, उसकी प्राप्ति उन्हें करा सके, उसकी अनुभूति उन्हें करा सके, ये ही उनके दुख को सुख में बदलने का कारण है, उनकी अशांति को शांति में बदल जाएगी वो, एक ये है। तो ये अग्नि का गुण है। और लास्ट तत्व कौन सा रह गया? आकाश। आकाश का क्या गुण है? विशालता, वास्टनेस। ऐसे ही आकाश जैसा बाबा कहता है, फिराक दिल बनो, बड़ा दिल वाले बनो। उसका भाव क्या है बड़े दिल वाले का? जितना जितना हम फिराक दिल बनते जाएंगे, बड़ा दिल बनते जाएंगे, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदा हो, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, मिसाइल, वो जितने भी आएंगे लेकिन हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकते वो। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया। और फिराक दिल का मतलब क्या है? किसी की बात को, कमी कमजोरी को हम अपने दिल में स्थान न दें। क्षमा का गुण हमारे अंदर बहुत महान रूप में हो। महान आत्माओं का एक यही गुण सबसे बड़े से बड़ा है। गौतम बुद्ध देखो, महावीर स्वामी देखो, मदर टेरेसा देखो, जो भी महान आत्माएं होके गई हैं, उनमें क्षमा का गुण विशेष था। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर पाएगा। तो आज अपने को ये देखें हम यहाँ पर कि मैंने किसी का कोई कमी कमजोरी को तो धारण नहीं किया, उसको क्षमा कर दिया कि नहीं। नहीं तो अंत समय में वो ही बात मुझे याद आती रहेगी और प्राण तन से नहीं निकलेंगे। इसीलिए इसमें हम अपने को ये धारण करते चले। तो बाबा आज यही हम बच्चों को चाहता है कि हम इस रीति से अपने को धारण करके फिर मन जीते जगत जीत और माया जीते जगत जीत और साथ में प्रकृति जीत बन के चलते चले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। एक हाथ की ताली बजा के धन्यवाद देंगे कि हम सभी मन को जीतेंगे, जरूर सभी जीतेंगे ना। और ये 3 दिन की योग तपस्या का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। आज का सोमान याद है? अच्छा, कल का सोमान जो कल, अरे वाह, बहुत सुंदर। तो हम सभी अपने सोमान में स्थित रहेंगे, कल उमंग उत्साह का दिन मनाएंगे और खुश नसीब आत्मा सोचकर चलेंगे। हम तो भाई साहब की क्लास के लिए यही कहेंगे, भगवान दिल के इरादे अजमाता है, आंखों से सपनों के पर्दे हटाता है। कभी हौसला ना हारना, क्योंकि मन जीतने से ही जगत जीत भगवान बनाता है। हमें अपने हौसले कभी खत्म नहीं करना है। और इंदौर के गणेश मालवीय भाई जी हैं, है थोड़ा मेरे से इधर मिलना। और शरद गौर भाई जी हैं भोपाल के, अभी हमारे बीच भोपाल से नगीन बहन जी आए हुए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। हम सबने सुबह भी बहुत सुंदर गीत सुना था, गीत सुना और सभी कितना अच्छा गुनगुना रहे थे, फूलों की माला बनाई। अभी भी बहुत सुंदर गीत गाएंगे हमारे बीच और हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
ब्रह्म बाबा का लिखा हुआ गीत है, बाबा का ही है। ए मेरे मीठे बाबा, ए मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सदगुरु, तू ही मेरी माँ। ए मेरे मीठे बाबा, ए मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान, तेरे मधुबन। रोशनी कम है, दिख नहीं रहा। प्लीज सॉरी।
तेरे मधुबन से जो निकली तो वो ही गंगाए महान, तेरे मधुबन से जो निकली वो ही गंगाए हैं महान। धन्य धन्य है ये गंगाए जो सुनाए तेरा ज्ञान। सबसे ऊंची शिव की शक्ति, सबसे ऊंचा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। तेरे मुख से रतन जो निकले वो बनाए दे महान, तेरे मुख से रतन जो निकले वो बनाए दे महान। धन्य है वो ज्ञान, धन्य है वो ज्ञान रत्न जो मिटाए दुख महान, जो मिटाए दुख महान। सबसे मीठी तेरी मुरली, सबसे न्यारी तेरी तान, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। माँ का दिल बन कर कभी गोदी बिठा लेते हो तुम, माँ का दिल बन कर कभी गोदी बिठा लेते हो तुम, और कभी ज्योति सा बिंदु बन के आदाते हो तुम। तुमको केवल हम ही जाने, जाने ना सारा जहां, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। आज भी सूक्ष्म वतन से हमको है बहला रहे, आज भी सूक्ष्म वतन से हमको है बहला रहे। बच्चों की करने तैयारी शिक्षाएं सिखला रहे, कैसे ये अद्भुत नजारा, कैसा ये अद्भुत नजारा, कैसा अद्भुत तेरा ज्ञान, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। ऐ मेरे मीठे बाबा, ऐ मेरे प्यारे दादा, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान।